प्रस्तावना। मुक्ति या स्वतंत्रता कृपा से प्राप्त हुई वस्तु नहीं है, आगे बढ़कर स्वयं प्रयत्न पूर्वक लेने की आवश्यकता होती है। मुक्ति किसी की संपत्ति भी नहीं है कि यह प्रश्न उठे कि कितनी ली जाए या कितनी दी जाए। इसके प्राप्त हो जाने पर भी सतत चौकस रहने की जरूरत होती है। बकौल बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अतएव स्त्री मुक्ति आंदोलन दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे से कमतर नहीं है। किसी भी युद्ध में उतने आदमी मारे नहीं गए होंगे जितनी स्त्रियां पितृसत्तात्मक समाज द्वारा नित ही हत होती रही हैं। इस प्रकार यह आंदोलन आधार मूलक और सार्वभौमिक है, लेकिन हिंसक नहीं, अहिंसक और सत्याग्रही। एक साथ ही वैयक्तिक है और समष्टि मूलक या संगठनात्मक भी। आत्मगत ही नहीं, आत्माभिव्यक्ति का संघर्ष भी है। इस आंदोलन का एक सशक्त मोर्चा साहित्य है। साहित्यिक कर्म का तात्पर्य है सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन व मूल्यांकन। पूरी दुनिया के साहित्य में स्त्री की उपस्थिति विभिन्न रूपों में रही है। स्त्री पुरुष संबंधों और संवादों से ही तो कोई भी रचना विकसित होती है, और रचना समय समाज की ही आलोचना है। स्त्री मुक्ति संघर्ष के दो आयाम हैं, परिवार और समाज। दोनों ही संस्थानों में स्त्री द्वितीय पराधीन और उत्पीड़िता रही है। इन प्रचलित मान्यताओं से टकराती आज के स्त्री का मुक्ति संघर्ष घर परिवार से शुरू होता है, फिर समाज की अनेकायामिता में वह अपना अस्तित्व गढ़ती है, समाज की मुख्यधारा में प्रविष्ट होती है। उसने अपने सृजनात्मकता को पहचाना है। वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह उपस्थित क्या स्वतंत्र होना नहीं है? पर दुखद सत्य यह भी है कि स्त्री को कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए, यह निर्णय आज की तारीख में भी पुरुष ही कर रहा है। अतः प्रस्तुत पुस्तक स्त्री मुक्ति संघर्ष का ही एक अभियान है, मगर आलोचनात्मक रुख के साथ। पुस्तक में संकलित सभी समालोचनात्मक लेख स्त्री केंद्रित उपन्यासों पर आधारित हैं। स्त्री कथाकारों के उपन्यास अधिक हैं, पुरुष कथाकारों के उपन्यास कम। लेखकों के चुनिंदा वे ही उपन्यास हैं जो अपनी विषय वस्तु और अभिव्यक्तिनी कौशल के कारण अधिक पठनीय और चर्चित रहे। उन उपन्यासों पर लिखना मुझे इसलिए आवश्यक लगा ताकि पुरुष दृष्टि और स्त्री दृष्टि के भेद को समझा जा सके। स्त्री जब लिखना शुरू करती है तो उसका संघर्ष उस वस्तु सत्य को मान्यता दिलवाने से शुरू होता है जिससे स्त्री जीवन बनता है। वह अपनी देह मन को परिभाषित करती है और स्वानुभवों तथा विचारों को मुखरित करती है। निस्संदेह यह प्रयत्न स्त्री होने के बोध से मुक्त होने का संघर्ष नहीं होता, लेखन उसका प्रतिसंसार है जहां वह स्वतंत्र या मुक्त होती है। अपने तर्क और प्रश्नों को गूंजती हुई एक नया संसार रचती है। अपने ज्ञान और संवेदना को लेखन में उतार कर स्त्री मुक्ति के संघर्ष को एक नया आयाम देती है। पुस्तक के असंख्य लेखन हंस, वागर्थ, कथाक्रम, हिंदुस्तानी आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास जो छूट गए थे उन पर लेखन पुस्तक के निमित्त किया गया। स्त्री का संघर्ष गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। इस दृष्टि से वृद्धावस्था पर केंद्रित दो उपन्यास समय सरगम और शेष कादंबरी उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद के सूक्ति वाक्य बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है कि सच्चाई तो आज भी बरकरार है, मगर उनकी देखभाल करने वाले लोग अब नहीं रहे। समाज के उच्च वर्गीय या उच्च मध्यवर्गीय सयाने वरिष्ठ जन परिवार से कटकर सही मायने में वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं। स्वयं का बोझ स्वयं के कंधे पर उठाते हुए लड़खड़ाते संभलते फिर चलते हुए। आलोचना रचना की तुलना में समृद्ध नहीं है। रचना में जितनी उर्वरता भिन्नता रही है उतनी ही आलोचना संकटापन्न मानी जाती रही है। आलोचना अपने स्वरूप में सोते जैसी रही है। आलोचना के क्षेत्र में कुछ लेखिकाओं की सक्रियता के बावजूद उनकी गणना प्रायः नहीं की जाती। प्रस्तुत पुस्तक आलोचना के इस शून्य को भी भरने का एक प्रयत्न है। फिलहाल पुस्तक अपनी विशिष्टताओं और न्यूनताओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं उन सबके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिनके दिशा निर्देश और सहयोग के बगैर यह पुस्तक प्रकाशित न हो पाती।